से बोलता ही रहा हूं और कुछ किया ही नहीं है। लेकिन एक ही चीज कहता रहा हूं और फिर भी लोग सुनना ही चाहते हैं, मुझे बुलाते हैं, मुझे अचरज होता है। मैं कोई नई बात कहता नहीं हूं, नई बात मेरे पास है भी नहीं। एक ही बात कहनी है और उसे दोहराता रहता हूं। कौन सी बात कहनी है? अभी आपने सुना कि दुनिया को बनाने की कोशिश नहीं, इंसान को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें भी थोड़ा फर्क है। इंसान को बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? वो काम भगवान का है, हमारा नहीं। हम अगर इंसान को बनाएंगे तो भगवान की गद्दी के दावेदार बन जाएंगे। और आप जानते हैं भगवान की गद्दी का दावेदार कौन होता है? शैतान। जो भगवान की जगह लेना चाहता है उसका नाम शैतान है। तो किसी आश्रम को और किसी स्कूल को शैतान का कारखाना नहीं बनना चाहिए। ये आश्रम का काम नहीं, ये स्कूल का काम नहीं कि वो इंसान को बनाए। तो फिर क्या काम है? इंसान को इंसान रहने में जो रुकावट डालते हैं उनसे बचना उसको सिखाए। आज के समाज में ऐसी रुकावटें हैं जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती, उसे और सब कुछ बना देती हैं लेकिन मनुष्य नहीं रहने देती। तो आश्रम और स्कूल मनुष्य को यह मौका दें कि वह मनुष्य रहे और साथ साथ स्वयं रहे, अपने आप रहे, किसी दूसरे की नकल नहीं बने। एक मामूली आदमी भी जब अपने आप में होता है तो नकली महात्मा गांधी से अच्छा होता है। नकली गांधी असली दादा धर्माधिकारी से बदतर है, क्योंकि वो असली नहीं है। तो आदमी खुद रहे और असली रहे, इसके लिए उसको मौका जहां मिलता है उसका नाम है आश्रम, उसी का नाम है स्कूल। ये उसको करना चाहिए और इसके लिए दुनिया बदलनी है। दुनिया से मतलब आज जैसा समाज है उसको बदलना है। आज समाज किसका है? रास्ते में सुब्बाराव ने कहा और गुरु शरण ने कहा कि यहाँ नज़दीक कुछ गांव वालों ने 5 किलोमीटर रास्ता बना लिया है अपनी मर्जी से, अपनी मेहनत से। बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर कोई डंडा लेकर वहाँ पहुँच जाए, एक 10-20 आदमी, उन गांव वालों से कहें कि इस रास्ते पर हम तुमको चलने नहीं देंगे, तो वो चल नहीं सकेंगे। जिन्होंने रास्ता बनाया है वो चल नहीं सकेंगे। कुछ पैसा लेकर आदमी पहुंच जाएं और कहें कि यह रास्ता हमने खरीद लिया है, अब तुम इस पर चल नहीं सकोगे, तो वो चल नहीं सकेंगे। पुलिस के 10-5 जवान पहुंच जाएं और रास्ते को रोक लें तो आदमी पहुंच नहीं सकेंगे। तो आज दुनिया किसकी है? पैसे वाले की है, डंडे वाले की है, हुकूमत वाले की है? हम चाहते हैं कि वो दुनिया इंसान की बने, मनुष्य की दुनिया हो, पैसे की नहीं, डंडे की नहीं, हुकूमत की नहीं। इसको बदलना है, कौन बदलेगा? तो मैं तो इसलिए जाता हूं अब आजकल कि मैं तो बदलने से रहा, अब मैं नहीं बदल सकता हूं। जिस जमाने में मैं समझता था कि बदल सकता हूं, उस जमाने में जो कुछ कर सकता था करने की कोशिश करता था, तो उसमें पहली चीज यह है कि पैसे वाले के सामने हम हाथ नहीं पसारेंगे, डंडे वाले के सामने माथा नहीं टेकेंगे और हुकूमत वाले के सामने फरमा बरदारी नहीं करेंगे। ये तीन चीजें अगर हम कर सकते हैं तब तो आश्रम और स्कूल मिलकर दुनिया को बदलेंगे, नहीं तो जैसी दुनिया बाहर है वैसी ही आश्रम में रहेगी, वैसी ही स्कूल में रहेगी और कोई किसी को बदल नहीं सकेगा। इसके लिए उन नौजवानों की जरूरत है जो पैसे वाले के सामने हाथ नहीं पसारेंगे। अब कॉलेजों में जाइए, अस्पतालों में जाइए, हर कमरे पर पैसे वाले का नाम लिखा हुआ है। इसकी पत्नी ने और तो और मंदिर के हर सीढ़ी पर नाम लिखा हुआ है। जाने हमारे मंदिर, हमारे आश्रम, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज सब पैसे वालों के कब्रिस्तान हैं। उनकी कहीं न कहीं समाधि बननी चाहिए, तो सारी समाधियां बना दो। अब इसमें से कैसे समाज परिवर्तन होगा? इसमें से हो नहीं सकता है। हम क्रांति की बात करते रहेंगे लेकिन वो तो जहां हम पढ़ा रहे हैं लड़कों को, वो सारी जगह पैसे वालों ने खरीद ली है। उसमें अब हमारा कोई दखल नहीं रह गया है। तो आज दुनिया या तो खरीदने वाले की है या छीनने वाले की है या हड़पने वाले की है। जिसके पास हुकूमत है वो हड़पता है, जिसके पास पैसा है वो खरीदता है और जिसके पास डंडा है वो छीनता है। अब इन तीनों का जवाब क्या है, यह सवाल है। अब तक दुनिया ने यह माना कि पैसे का जवाब है ज्यादा पैसा, डंडे का जवाब है बड़ा डंडा और हुकूमत का जवाब है ज्यादा हुकूमत। यहां भोपाल की हुकूमत से दिल्ली की हुकूमत बड़ी है। पुलिस वाले के डंडे से फौज वाले का डंडा बड़ा है और हमारे मामूली फुटकर दुकानदार से टाटा बिरला की थैली बड़ी है। तो इसका तो मतलब ये हुआ ना कि ज्यादा हुकूमत जिसके हाथ में होगी उसकी दुनिया होगी, जिसका डंडा सबसे बड़ा होगा उसकी दुनिया होगी, और जिसकी थैली सबसे मोटी होगी उसकी दुनिया होगी। अब इसमें मेरे जैसे बूढ़े के लिए तो कोई जगह ही नहीं, तो जाने दीजिए, बूढ़े तो जल्दी ही मरघट में जाने वाले हैं, उनको रास्ता साफ कर दीजिए। लेकिन इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए कोई जगह है दुनिया में? इन स्त्रियों के लिए कोई जगह है? अब मुझे यह बतलाइए आप कि जो बच्चों को, स्त्रियों को, बीमारों को, भले आदमियों को, कमजोर लोगों को दुनिया से हटा देना चाहता है, वो इंसान है कि शैतान है? इसका जवाब कैसे आप मिले, वो सब आप गांधी जी के बड़े बड़े शब्द छोड़ दीजिए, हम शब्द रट लेते हैं, इस देश में ये रहा है, शब्द रटते चले आए, जीवन में कभी कुछ नहीं रहा। ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, और हम क्या है तो कुछ भी नहीं है, और ईश्वर ये है और वो है, दुनिया हमारे पास, वो हरे कृष्ण वाले आते हैं सीखने के लिए, और किससे सीखने के लिए आते हैं? हम बेवकूफ़ों से ही सीखने के लिए, जो हजारों साल गुलाम रहे, उनसे क्या सीखेंगे? लेकिन सीखने की उनकी सिफत है, इसलिए हर एक से सीख ही लेता है आदमी, गधे से भी तो सीखते ही है ना कुछ न कुछ, पेड़ों से भी सीखता है, नदियों से सीखता है, पहाड़ों से सीखता है, फिर यहाँ तो 60 करोड़ आदमी है, इनसे कुछ सीख तो लेता ही है। वो शक्ति हमारी नहीं है, सीखने वाले की है। शेक्सपियर का एक नाटक है, एक नवाब को निकाल दिया था तो जंगल में जाकर रहा था, किसकी सोहबत? तो उसने कहा, सोहबत की क्या जरूरत है, मेरी रियासत थी तो पैसा था, दरबारी थे, चापलूसी करते थे, वजीर थे, यहाँ इनमें से कोई नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि पत्ते पत्ते में भगवान की जीभ है, बोल रही है, इन नदियों में संगीत है, ऐसा लगता है कि भगवान इन नदियों में से ही भी मुझे सिखा रहा है, और इस पत्थर पर भगवान के प्रवचन लिखे हुए हैं, चट्टान चट्टान पर। तो ये आदमी की सीखने की सिफत होती है। पश्चिम के लोगों में जिज्ञासा है, जिज्ञासा से मतलब जानने की इच्छा। सबसे बड़ा मनुष्य का गुण है जिज्ञासा, जानना चाहेगा, नकल करना नहीं चाहेगा। जानना है तो नई चीज होती है, जानना अलग चीज है, और जानी हुई चीज रट लेना अलग चीज है। दूसरों की जानी हुई चीज रट लेते हैं, उधार लेते हैं। हम कुछ जानते हैं, उसे जिज्ञासा कहते हैं। जिज्ञासा सबसे बड़ा अध्यात्म है। अध्यात्म इससे बड़ा है ही नहीं कुछ। निरंतर जानने की इच्छा, कुछ जाना है ऐसा है ही नहीं, सब जानना ही है। तो इस देश ने क्या मान लिया कि जो कुछ जानना था वो हमारे ऋषि मुनियों ने जान लिया है, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। तो बाकी क्या रह गया है, जो उन्होंने जान लिया है उसे रटो। पश्चिम का आदमी लगातार जानना ही चाहता है, इसलिए वो जिंदा है, हम जिंदा नहीं रहे। तो इस देश में जो पहली चीज हमको जगानी चाहिए वो जिज्ञासा, जिज्ञासा प्रश्न। दुनिया के सारे धर्म के ग्रंथों में जितनी सच्चाई होगी उससे ज्यादा सच्चाई ईमानदारी के प्रश्न में है। मनुष्य के जीवन में जो प्रश्न उठता है उसमें से सच्चाई आती है। पश्चिम के लोगों में और हम में यह फर्क है। विज्ञान में प्रश्न होता है, लगातार प्रश्न, लगातार खोज। प्रश्न है, प्रश्न के साथ खोज है लगातार। तो ये इंसानियत किस चीज में है मैंने बताया आपको। दूसरी चीज थोड़ा इसको आसान करके रखूंगा आपके सामने। विनोबा बहुत पहले, कोई 50 साल पहले एक कहानी कहा करते थे। इत्तेफाक से एक राक्षस की और एक आदमी की दोस्ती हो गई। तो राक्षस ने कहा कि चलो मेरे साथ सफर पर चलो, दुनिया की सैर करेंगे तो तुम्हें भी आनंद आएगा और मुझे भी आनंद आएगा। अब वो राक्षस के कदम बहुत बड़े और इसके छोटे छोटे। मित्रों, ये नया मजदूर संगठन होगा, जब होगा तब होगा। अब तक जो मजदूरों का संगठन है वो समाज परिवर्तन के लिए है ही नहीं, वो मजदूरों के संगठित स्वार्थ के लिए है। असली मजदूर संगठन कब होगा, जब दुनिया भर के मजदूर ऐलान कर देंगे कि कल से तलवारें बनाना बंद, कल से हम हथियार नहीं बनाएंगे। बाइबल में एक किस्सा है, दो भाई थे, केन और एबल नाम के दो भाई थे। तो केन ने अपने भाई को मार डाला, तो किस चीज से मारा, तलवार से मारा। तो एक लोहार ने तय किया, जो पहले विश्वकर्मा हुआ होगा बड़ा लोहार, उसने तय किया कि जितनी तलवारें हैं उनके हल बनाऊंगा, आज से तलवार बनाना बंद, हल ही हल बनेंगे दुनिया में। क्यों, कि उस लोहार को ही एक ने धमकाया कि तू मेरा काम नहीं करेगा तेरी गर्दन उतार लूंगा। किस चीज से उतार लूंगा, तलवार से। उसने कहा ये तलवार तो मैंने ही बनाई थी, मेरी बेवकूफी है, ये हर सिपाही की तलवार मैंने बनाई है, हर तिजोरी का सिक्का मैंने बनाया है, हर सिंहासन की कील कील मेरी बनाई हुई है, तो गुनहगार तो मैं हूं। अपनी गुलामी के सारे साधन इस चीज बनाने वाले ने पैदा किए हैं, मजदूर ने। इसलिए नया मजदूर संगठन क्या होगा, गुलामी के साधन नहीं बनाएंगे। ये क्रांतिकारी संगठन है मित्रों, आज तो कुछ तो हुआ नहीं है, जब होगा तब होगा। इसलिए हमारी खादी दुकानदारी में भी सफल नहीं हो रही है। क्योंकि वो ऐसा काम करने गई जो उसका काम है ही नहीं, कभी सीखी नहीं थी, तो उस काम में तो सफलता मिलेगी ही नहीं। उसमें तो माहिर बैठे हुए हैं बाजार में, अब उनकी विद्या ये सीखना चाहता है खादी वाला, तो होगा नहीं। तो इसका नतीजा ये हुआ है कि खादी में भी मालिक और नौकर का रिश्ता आ गया है, जो हर कारखाने में आ गया है, हर उद्योग में आ गया है। पैसा देने वाला, पैसा पाने वाला, काम करने वाला, काम कराने वाला, ये रिश्तेदारी आज की बाजार की बुनियाद में। आज का जो समाज है उसको मैं समझा रहा हूं आपको, बुनियादें उसकी, जिन बुनियादों को हम बदलना चाहते हैं। तो ये चीज खादी में भी आ गई, इसलिए अब खादी में भी हड़तालें होने लगी। बंबई में तो मैं था तो 6-8 महीने 10 महीने तक हड़ताल चलती रही। उन लोगों ने फिर मुझे बुलाया, जैसे आप लोगों के बीच आज आ गया हूं, तो उन लोगों ने मेरी बातें सुन ली, शायद वहां से सोचते हुए चले गए कि फजूल ऐसे बुलाया, ऐसे ये ऐसी बात कहता है कि जो हम कभी करने वाले नहीं हैं। बाजार की होड़ में खादी कभी ठहरेगी ही नहीं, वो बाजार की होड़ में अपने सत्व को छोड़ती चली जाएगी और बाजार में मिल जाएगी, जो आज तक हुआ है। इसलिए हमको समाज के को बदलने के लिए अपने आसपास को, पड़ोस को बदलना होगा, और पड़ोस है सारा समाज। इस पड़ोस को बदलने का नाम ही है संदर्भ बदलना, परिस्थिति को बदलना। अब केवल सिर्फ विधायक काम से काम नहीं चलेगा, परिस्थिति को बदलने के लिए भी कुछ करना होगा, नहीं तो यह सारा का सारा या तो धन वाला खरीद लेगा या हथियार वाला छीन लेगा। अब आप देखिए ना, इतना विश्वामित्र महर्षि, जैसों की तपस्या का आश्रम, अब विश्वामित्र महर्षि में क्या कम ताकत थी? आपने सुना होगा ना कि वो त्रिशंकु को लटका दिया, इंद्र ने कहा कि स्वर्ग में नहीं आने दूंगा, ठीक है नहीं आने देगा तो पृथ्वी पर तो आने ही नहीं दूंगा, वो उसको और वहां लटका दिया। और जब यज्ञ में सत्यानाश यज्ञ का करने आए राक्षस, तो दौड़ते गए दशरथ राजा के पास कि राम लक्ष्मण को भेजो, और राम लक्ष्मण कैसे थे, जिनका चौल भी नहीं हुआ था, यानी बाल बन के बाल भी नहीं कटे थे, काकपक्ष धरा वाल्मीकि ने वर्णन किया, ऐसे बच्चों को ले चले क्योंकि उनके हाथ में हथियार थे, धनुष बाण था। तो आश्रमों की रक्षा धनुष बाण से होती थी, इसलिए आश्रम सब निस्सत्व हो गए। धनुष बाण को प्रेरणा आश्रम दे कि धनुष बाण की सहारे आश्रम जिए, ये सारे स्कूलों को भी सोचना होगा। विनोबा बहुत दूर की सोचते हैं, बड़ी फतेह की बात कहते हैं कि आचार्य कुल पहला काम यह करे कि सरकार की सत्ता में से शिक्षण को हटा ले, उसको उबार ले, अनुशासन आचार्यों का रहे। बहुत दूर की बात कहते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि जयप्रकाश जी ने आंदोलन किया, सब कुछ किया, लेकिन दूर की सोचने के मामले में विनोबा से आगे अब तक कोई गया नहीं है। वो बहुत दूर की बात सोच कर कहते हैं, कर ना पाए हूं, लेकिन कौन कर पाएगा, एक जिंदगी में तो करना मुश्किल है ना। ये रिले रेस है मित्रों, रिले रेस। रिले रेस से मतलब आपको मालूम है ना इसका, हमारे जमाने में तांगे चलते थे पहले, ये मोटरें थी नहीं, तो हर 6 मील पर घोड़े बदलते थे। तो बैतूल से निकले इटारसी जाना है 56 मील, तो 6-6 मील पर 6-6 मील पर चले वो घोड़े बदलते हुए, 9 जगह उन्होंने घोड़े बदले। इसे रिले कहते हैं, रिले रेस। एक आदमी जहां रुका वहां से दूसरा शुरू। आजकल लड़के सीखे हैं ना रिले फास्ट, इन्हें भूख हड़ताल भी रिले होती है। मैंने खा पी लिया, फिर 2 घंटे वहां बैठा उपवास करने, फिर 2 घंटे के बाद खा पी कर तुम आ गए, तो चले रिले का उपवास। तो इतिहास एक रिले रेस है। रिले रेस से मतलब ये एक एक टप्पा, एक एक टप्पा, एक एक मंजिल से चलता है। तो विनोबा एक मंजिल तक आया, अब वो आखिरी मंजिल तक पहुंचे, ये कोई बुद्धिमानी का आग्रह नहीं है। आगे दूसरों को चलना चाहिए, नहीं तो नई पीढ़ी है किस लिए, विनोबा की बाद की पीढ़ी है किस लिए। वो इसीलिए है, जेपी संपूर्ण क्रांति नहीं हुई। संपूर्ण क्रांति होगी कहां से, वो आदमी तो हफ्ते में 3 रोज मरता है और 4 रोज जीता है। अब उससे जाकर कहता हर एक आदमी संपूर्ण क्रांति मुक्के दिखाकर, तो क्या होगा, ये करना नहीं चाहता है खुद। तो हमको, मैंने जैसा शुरू में कहा, दुनिया बांटने वालों की हो, ये आखिरी चीज मैं आज के लिए कहूंगा। बांटना जहां पर चलता है उस संस्था का नाम क्या है, परिवार। परिवार में हर चीज बटती है और बटने का आधार क्या है। क्या परिवार में आप यह करते हैं कि जो सबसे ज्यादा कमाता है वो सबसे ज्यादा खाए, ये कभी परिवार में हुआ। तो घनश्याम दास बिरला तो कितना कमाता है मैं समझता हूँ, लेकिन सबसे कम खाता है अपने मकान में, खा ही नहीं सकता, जाए आजमा ही खराब हो जाता है। तो ये तो होता नहीं है ना। घनश्याम दास बिरला से कोई व्यक्ति का मतलब नहीं है मेरा, मेरा कहने का मतलब यह है कि बड़े से बड़ा आदमी कुछ संकेत बन जाते हैं। घनश्याम दास बिरला एक संकेत समझिए, एक प्रतीक, मोरारजी भाई कहूं तो प्रतीक। हुकूमत जिसके हाथ में है उस आदमी से मुझे कोई मतलब नहीं, गामा पहलवान कहूं या कौन है आजकल किंग कॉन्ग या भीम कहूं, तो एक प्रतीक है वो तो व्यक्ति तो गए। तो इस तरह मान लीजिए मकान में बंटवारे का आधार क्या है, जरूरत। जरूरत और योग्यता, जरूरत और योग्यता दोनों को जो मिलाकर बनता है उसका नाम है अधिकार। इस अधिकार शब्द को समझ लीजिए, जरूरत हो और योग्यता भी हो उसे अधिकार कहते हैं। नहीं तो हर आदमी कहता है ये मेरा अधिकार है, अब मैं भी कहता हूं कि मेरा अधिकार है कि मैं दारा सिंह से कुश्ती लड़ूं, है जरूर है, लेकिन योग्यता है ही नहीं। तो अधिकार और योग्यता दोनों चाहिए, यह बंटवारे का आधार है। परिवार का एक एक लक्षण बतला रहा हूं आपको। दूसरा, परिवार में काम के दाम नहीं, काम का दाम के साथ संबंध नहीं, यह परिवार का दूसरा गुण है। परिवार में कोई कहेगा अपने जवान बेटे से, कोई बाप, कि तू 10 रोटियां खाता है तो 10 रोटियों के दाम दे, कहेगा कोई? दाम से कोई संबंध नहीं। बर्तन वाली बर्तन मांझने आती है तो आपसे 10 रुपया ले लेती है, अपने घर बर्तन मांझती है तो कितने रुपए लेती है? कुछ भी नहीं। ये गुरु शरण कॉलेज में पढ़ाता है तो तनख्वाह लेता है, अपने बेटे बेटियों को पढ़ाता होगा तो क्या लेता होगा? टाइप करने वाला दफ्तर में टाइप करता है तो दाम लेता है, अपने घर में चिट्ठियां टाइप करता है तो क्या लेता है? तो घर का बहुत बड़ा गुण यह है काम के दाम में, काम का दाम के साथ कोई संबंध नहीं, यह घर का दूसरा गुण है बहुत बड़ा। और तीसरा बहुत बड़ा गुण है एक दूसरे का डरने, आदर है लेकिन एक दूसरे से डर नहीं। असल में सबसे भयानक प्राणी दुनिया में कौन सा है? खतरनाक मनुष्य। आसाम में विनोबा थे, एक दिन एक किसान आया, कहने लगा किसी तरह बाबा हमको एक एटम बम दिला दीजिए। अब उसका ख्याल था कि इसकी टेनिस के गेंद के बराबर होता होगा तो रख लेंगे अपना घर में छोटा सा। का क्या करोगे एटम बम से? का ये रीछ और शेर बहुत तंग करते हैं, हमारे खेत में फसल बचने नहीं देते, मैं एटम बम मारूंगा। तो विनोबा ने कहा कि इनके लिए तो एटम बम की जरूरत नहीं है, ये तो बंदूक से काम चल सकता है। तो क्या बैटम फिर एटम बम किसके लिए है? तो कहे तो मनुष्य को मारने के लिए बनाया है। कहा हरे राम, इतने मूर्ख है, मनुष्य को मारने के लिए तो चाकू से मारा जा सकता है, एटम बम किस लिए चाहिए? मनुष्य तो आसानी से मर सकता है, उसका गला दबा दो तो मर जाता है, फिर उसके लिए एटम बम क्यों? लेकिन दुनिया में एक के बाद एक शस्त्रास्त्र निकल रहे हैं मनुष्य को मारने के लिए। इसमें मनुष्य की कितनी बड़ी बड़ाई है सोच लो, सारे हथियार आज तक बेकार कर दिए उसने, और एटम बम भी बेकार हो जाएगा। वो एक था विलियम फॉकनेर, नोबेल प्राइज मिला था इसको। उसने एक कहा वाक्य कि मनुष्य कभी मारा नहीं जा सकता, मनुष्य मारे जाएंगे मनुष्य मरे नहीं मरेगा, आदमी मारे जाएंगे आदमी नहीं मरेगा। अंग्रेजी में MEN बहुवचन, बहुवचन में मनुष्य मरेंगे, एक वचन में मनुष्य कभी नहीं मरेगा। क्योंकि जितने हथियार निकले हैं अब तक सब मनुष्य की इजाद हैं, मनुष्य ने ही यह हथियार निकाले हैं, तो वो मनुष्यों को मार सकता है, मनुष्य को नहीं मार सकता। सबसे खतरनाक मनुष्य को अगर किसी से डर है तो मनुष्य से है। एक डर होता है स्वाभाविक।